इसके पीछे अपने जिस्म को भी बचाना है और बाकी टीम को भी बचाना है,
क्योंकि 2001 से लेके आज तक वो एशेज ही नहीं जीते, तो उनको इंटरनेशनल परेशानी होगी, तो हमें तो डोमेस्टिक परेशानी नहीं हो रही है।
वो खिलाड़ी नहीं हमें लेने चाहिए जो 20 साल के हों, 17 साल के हों, 18 साल के हों।
अगर तो वो सारे अकाउंट बीसीसीआई के और स्टेट एसोसिएशंस को चेक करेगा तब तो बीसीसीआई की मुसीबत बहुत बढ़ जाएगी।
फॉलो ऑन ना कराने के पीछे मिसबा की क्या मंतव्य, ऑस्ट्रेलिया किस से परेशान और पाकिस्तान क्यों मुतमईन, ओलंपिक के लिए बड़े मियां नहीं बल्कि छोटे मियां, और सुप्रीम कोर्ट का भारतीय क्रिकेट बोर्ड को तगड़ा झटका। खेल के मैदान से अब्दुल्ला फारूकी का सलाम। पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-0 से तो जीत ही ली है और अब इतवार से शारजा में तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच का आगाज होगा। इसमें पाकिस्तान की कोशिश एक और जीत के जरिए क्लीन स्वीप करने की होगी और वेस्टइंडीज की टीम, जो पहले ही T20 और वनडे में वाइट वॉश हो चुकी है, जरूर ये चाहेगी कि आखिरी टेस्ट किसी भी तरह जीत ले। शारजा से अब्दुल रशीद शकूर।
वेस्ट इंडीज का इस दौरे में इतना बुरा हाल होगा इसका सबको अंदाजा था, बल्कि मुबसरीन ने यहां तक कह दिया था कि वेस्ट इंडीज की ये टीम 9-0 की हजीमत पर यह दौरा खत्म करेगी। ये 9-0 अब शारजा में मुकम्मल होता दिखाई दे रहा है। अगरचे पहले टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज की टीम एक मरहले पर बाजी जीतने की पोजीशन में आई, लेकिन मजमूई तौर पर वेस्ट इंडियन खिलाड़ियों में मुकाबला करने से ज्यादा बेजारी दिखाई दे रही है। वेस्ट इंडीज को दुबई और अबूजहबी दोनों टेस्ट मैचों में फॉलो ऑन का सामना करना पड़ा, लेकिन मिसबाहुल हक ने उसे फॉलो ऑन नहीं कराया। मिसबाहुल हक अपनी कप्तानी में अब तक 5 मरतबा हरीफ टीमों को फॉलो ऑन ना कराते हुए दूसरी इनिंग्स में बैटिंग को तरजीह दे चुके हैं, तो इसके पीछे उनकी क्या सोच कार फरमा है?
उसके पीछे अपने जिस्म को भी बचाना है और बाकी टीम को भी बचाना, क्योंकि आप एक हर इनिंग में 100 से ज़्यादा ओवर आप फील्डिंग करते हैं, तो कॉन्टीन्यूसली अगर आप सोचें कि 2 दफ़ा किसी भी टीम को उस पूरी टायर्ड बॉडीज़ के साथ दोबारा से 100 ओवर की फील्डिंग करने के बाद दोबारा जाके आप आउट करना है, आपने फास्ट बॉलर्स को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, या फिर शायद 30+ ओवर या 40 ओवर्स कराने के बाद फिर दूसरी इनिंग में 40 ओवर आप फिर उसको करा दें बगैर रेस्ट के, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टेस्ट में आपको 11 प्लेयर नए बुलाने पड़े। तो कंडीशंस को देखते हुए, वेदर को देखते हुए, आप चाहते हैं कि आप थोड़ा और ज़्यादा डिटेरिएट हो जाए पिच 4th or 5th day पे, तो आपको फ़ायदा हो उसका, बजाय उसके कि आप 150 चेस कर रहे हैं आखिरी दिन या 200 चेस कर रहे हैं।
पाकिस्तानी टीम की असल कुव्वत स्पिन बॉलिंग ही है, लेकिन इस सीरीज में बनने वाली पिचेस में ज़्यादा टर्न दिखाई नहीं दिया है और यही बात मिसबाहुल हक को पसंद नहीं आई।
अगर हम अपनी स्ट्रेंथ को देखें तो हमारी स्ट्रेंथ स्पिनर्स हैं, यासिर शाह वर्ल्ड क्लास स्पिनर है हमारे पास, तो हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको सपोर्ट मिले, उनको टर्म मिले, बट आई डोंट नो, ये पिच तो टोटली मेरे ख्याल में 5वें दिन भी वो खास टर्न नहीं था, तो क्रेडिट दूंगा बॉलर्स को कि बिल्कुल फ्लैट पिच थी, कुछ भी नहीं था किसी बॉलर के लिए, इस पे परफॉर्म करना, इस पे 20 विकेट लेना मेरे ख्याल में बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
इस सीरीज में DRS टेक्नोलॉजी नामुकम्मल अंदाज में इस्तेमाल हो रही है, यानी हॉटस्पॉट और स्निकोमीटर के बगैर। साबिक कप्तान वकार यूनुस का कहना है कि DRS को मुकम्मल तरीके से इस्तेमाल करने के लिए सोच विचार की जरूरत है।
देखिए, होना तो चाहिए, होना तो उसमें तो कोई शक वाली बात और दो राय है ही नहीं कि इसमें जब जहां पे भी टेस्ट मैच क्रिकेट का जहां पे नाम लगता है तो वहां मेरे ख्याल में आपके जितने भी टूल्स हैं एक अच्छा डिसीजन करने के लिए वो ज़रूर होनी चाहिए। हाँ, इसमें बहुत सारी डिबेट है कि हम कहते हैं कि ICC को लगाना चाहिए, वो कहते हैं ब्रॉडकास्टर को लगाना चाहिए, ब्रॉडकास्टर कहते हैं जिसकी सीरीज़ है, जिसका माल है वो लगाए, तो आई थिंक ये थोड़ी सी डिबेट है जो की जा सकती है। आई थिंक ये तीनों पार्टी को बैठ के मिल के इस पर फैसला करना चाहिए। जो व्यूअरशिप है वो डिसीजन ज़ीरो टॉलरेंस मांगती है उसमें, तो उसमें यही तरीका है कि आप फिर ये ब्रॉडकास्टर और होम सीरीज़ वाले और जो भी इन्वॉल्व हैं वो फिर एक स्टैंडर्ड उसका सेट कर देना चाहिए, चाहे वो इंडिया में मैच हो रहा हो या जिम्बाब्वे में मैच हो रहा हो या वेस्ट इंडीज में या ऑस्ट्रेलिया में।
अबूजाबी टेस्ट मैच में अंपायरिंग का मैयार खासा पस्त रहा और अंपायर्स रिचर्ड इलिंगवर्थ और माइकल गफ के 8 फैसले गलत साबित हुए। इस सीरीज में इंग्लैंड के इयान गोल्ड को अंपायरिंग करनी थी, लेकिन उनके ना आने के सबब ना तजुर्बेकार माइकल गफ को अंपायरिंग की जिम्मेदारी सौंप दी गई। अब्दुल रशीद शकूर, BBC शारजा।
पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट की समत का तायुन आज तक नहीं हो सका, कभी रीजनल क्रिकेट तो कभी डिपार्टमेंटल क्रिकेट को ख़त्म करने की बातें। इसी तरह पाकिस्तान दुनिया टेस्ट का वाहिद रुकन मुल्क है जिसके डोमेस्टिक सीजन और उसके इंटरनेशनल मैचों में अलग अलग किस्म की गेंदें इस्तेमाल होती हैं। शारजा में हमारे साथी अब्दुलरशीद शकूर ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और फास्ट बॉलर वकार यूनुस से पूछा कि पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो गेंद इस्तेमाल होती है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में इस्तेमाल नहीं करता, क्या वजह है कुछ हमें भी समझाइए।
दुनिया में हर जगह जो बॉल आप टेस्ट मैच में लगाते हैं वही आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में लगाते हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आती है कि हम टेस्ट मैच तो कोकबरा या इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड की बॉल से खेलते हैं, जब हमारी बारी आती है जहाँ से हमने जिस फैक्ट्री से हमने माल उठाना है, जिस फैक्ट्री से माल प्रोड्यूस करना है उसकी तरफ जाते हैं, तो वहाँ हम सस्ता माल लगाना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे हम कॉस्ट कटिंग करना शुरू कर देते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि ये आपकी प्रोडक्ट है, यही आपको पैसे और यही आपको फाइनेंशियल बना के देती है। तो आई थिंक इस पे हम लोग, मेरी डिबेट भी यही है, मेरी लड़ाई भी यही है, मैं कोशिश भी यही कर रहा हूँ, इसको किसी तरीके से ऐसा कर दिया जाए कि किस प्रॉब्लम जो है ना पाकिस्तान की, जो डोमेस्टिक क्रिकेट से लड़के आते हैं, जो फास्ट बॉलर या स्पिनर आउट करके आते हैं, वही चीज़ यहाँ पाएँ जब वो टेस्ट मैच क्रिकेट में आते हैं। तो आई थिंक ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पास में हमने किया ये कि हम लोगों ने कोशिश की कोकबरा बॉल लगाने के लिए, लेकिन साल भी नहीं निकाला और हमने उसको बदल देने की कोशिश की, जी हमारे कॉस्ट ज़्यादा आती है। आपका डोमेस्टिक क्रिकेट का, मैं ये चाहूँगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट का बजट और फिर ऊपर से बॉलों का बजट, ये दोनों का निकाल के अगर देखें कि अगर हमें सूट करता है, तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट के मेरी नज़र में, क्योंकि मैं ड्यूक बॉल को इस तरह इसलिए प्रेफरेंस देता हूँ कि मैंने क्रिकेट अपनी जब शुरू की थी तो पाकिस्तान में ड्यूक बॉल यूज़ होता था। तो आई फील के अगर आपके पास चार आने लग भी जाते हैं, एक्स्ट्रा लग जाते हैं, तो आप अपनी प्रोडक्शन पर ही लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये बॉल का बदलना मेरे ख्याल में तो बहुत ज़रूरी है।
ऑस्ट्रेलिया में जो है वो कोकबरा होती है, तो क्या ये वजह तो नहीं होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जहन में कि हमने ऑस्ट्रेलिया भी जाना है तो फिर कोकबरा से ही हम खेलें?
आपने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना, आपने दुनिया के बाकी कोनों में भी जाना है। आप जब इंडिया खेलते हैं तो एसजी का बॉल है जो कि बहुत करीब है ड्यूक जैसा ही बॉल है, एग्जैक्टली उसी तरह का बॉल है। इंग्लैंड में जाते हैं ड्यूक है, वेस्ट इंडीज में जाते हैं ड्यूक है, हाँ कुछ जगहें ऐसी हैं जैसे साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे कोकबरा बॉल लगता है, उनकी प्रॉब्ली पिचेस को ज़्यादा सूट करता है क्योंकि बाउंसी पिचेस हैं। पर मैंने आज ही आर्टिकल पढ़ रहा था और मैंने पिछले दिनों भी सुना है कि वो जो नेक्स्ट हाफ जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का है, इवन ऑस्ट्रेलियंस भी ड्यूक बॉल पे जा रहे हैं। तो आई थिंक क्योंकि 2001 से लेके आज तक वो एशेज ही नहीं जीते, तो उनको भी परेशानी, उनको इंटरनेशनल परेशानी होगी, तो हमें तो डोमेस्टिक परेशानी नहीं हो रही है।
अब जिक्र पाकिस्तान के उन एथलीट्स का जिन्होंने अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में मुनाकिद होने वाली बाइथल और ट्राइथल वर्ल्ड चैंपियनशिप में 3 तलाई, 1 चांदी और 1 कांसे का तमगा जीता है। इन मुकाबलों में दुनिया भर के 25 ममालिक के 600 एथलीट्स ने स्विमिंग, शूटिंग और रनिंग के मुकाबलों में हिस्सा लिया था। मैंने पाकिस्तान मॉडर्न पेंटाथलॉन फेडरेशन के सेक्रेटरी जहूर अहमद से पूछा कि पाकिस्तानी एथलीट्स की उम्रें क्या थीं और अब क्या ये बच्चे ओलंपिक्स में जा सकेंगे।
ये तकरीबन 8 साल से लेकर तो कुछ 60-70 साल के खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो हमारे बच्चों की उम्र तकरीबन कोई 8-9 साल से लेकर, एक बच्चा जो था वो अंडर 90-70 का था, बाकी तो बच्चे छोटे ही थे, 14-12 साल, ये बच्चों की एज थी। और ये होती है पॉइंट टेबल के ऊपर होती है, इसमें होता है कि बाद बच्चे स्विमिंग में पीछे रह जाते हैं, शूटिंग में पॉइंट पूरे कर लेते हैं, रनिंग में पूरे करके फर्स्ट आ जाते हैं। कहीं ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा गेम है कि बच्चों को हर इवेंट में, हर उस इवेंट के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है और हर इवेंट को सीरियस लेके जाना पड़ता है।
आगे क्या मजीद ओलंपिक्स के लिए बच्चे ये तैयार हैं या अभी आप समझते हैं कि इन पे और काम की जरूरत है?
हमारी कोशिश अब है, देखें अब कुछ करने से ही हासिल होता है, हमने छोटे बच्चों से ही इसको उठाया है गेम को, और हमारी कोशिश है कि ये 5 है, हम कम से कम इसको 100 छोटे बच्चों को लें और 100 छोटे बच्चों को हम तैयार करें ताकि ये आगे 2 साल या 3 साल तक अपना ओलंपिक तक ये पहुंचे बच्चे, अब और पेंथलॉन में पहुंचे, अपने 5 गेम्स पूरी करें। तो हम चाह रहे हैं कि हम नई गेम्स लेके आए जिसमें बच्चे आए और मुल्क के लिए मेडल्स लें और मुल्क की खिदमत करें और ओलंपिक में जाए, सब टारगेट हमारा ओलंपिक होना चाहिए। तो वो खिलाड़ी नहीं हमें लेने चाहिए जो 20 साल के हों, 17 साल के हों, 18 साल के हों, हमें छोटे बच्चों को मेहनत करनी चाहिए, अगले 3-4 साल के लिए, 5 साल के लिए उन पर इन्वेस्ट करना चाहिए।
और अब इंडिया का रुख करते हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इंडिया को तगड़ा झटका दिया है। कैसे और क्यों, सुनिए दिल्ली से आदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
गुज़िश्ता हफ्ता सुप्रीम कोर्ट और बीसीसीआई के दरमियान टकराव का हफ्ता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई में इस्लाह को लेकर जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को पूरी तरह अमल करने के सवाल पर बीसीसीआई को तगड़ा झटका देते हुए उसके और उससे जुड़ी तमाम स्टेट एसोसिएशन के तमाम लेनदेन पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो किसी भी स्टेट एसोसिएशन को कोई पैसा ना दे, यहाँ तक कि मैच की मेजबानी तक के लिए भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीसीसीआई 3 दिसंबर तक उसके और लोढ़ा कमेटी के सामने इस्लाही इकदामात को लेकर हलफनामा पेश करे कि उन्हें अमली जामा पहनाने में कितना वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीसीसीआई के खातों पर नजर रखी जाए और निगरानी के लिए लोढ़ा पैनल ऑडिटर तैनात करे। इसे लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट प्रदीप मैगजीन कहते हैं,
क्या जो ऑडिटर बिठाएंगे क्या वो बीसीसीआई के सारे अकाउंट्स चेक करेगा कि सिर्फ अकाउंट्स जो एसोसिएशन को है फ्रीज करने के लिए है? अगर तो वो सारे अकाउंट्स बीसीसीआई के और स्टेट एसोसिएशन को चेक करेगा तब तो बीसीसीआई की मुसीबतें बहुत बढ़ जाएगी।
इसके अलावा अगले साल होने वाले बीसीसीआई के अपने सबसे बड़े टूर्नामेंट आईपीएल के मीडिया हकूक की नीलामी का अमल भी टलता नजर आ रहा है। बीसीसीआई के सदर अनुराग ठाकुर ने पिछले महीने आईपीएल को दुनिया का बेहतरीन टूर्नामेंट बताते हुए दावा किया था कि इसकी नीलामी सबसे अलग होगी।
आईपीएल टुडे इज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग लीग, इट इज द मोस्ट पॉपुलर।
तो क्या बीसीसीआई के लिए एक मुसीबत और खड़ी हो गई है? एक और क्रिकेट एक्सपर्ट वी कृष्णा स्वामी कहते हैं,
अब ऐसा वक्त आ गया है कि जहां पर ना बीसीसीआई के पास वक्त है और ना जो मीडिया राइट्स के लिए जो कंपनीज आना चाहती हैं उनके पास भी वक्त नहीं है, तो इससे दोनों साइड्स को काफी नुकसान होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट की कोई गलती नहीं है, ना ही कोई लोढ़ा कमेटी की गलती है। जो उन्होंने ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन दिए थे वो जुलाई 18 से बीसीसीआई को मालूम थे, वो इस मोड़ पर आकर जो खड़े हुए हैं वो उनकी अपनी किया करामा।
वैसे लंबे समय तक ना नुकर करता आया बीसीसीआई अब इंग्लैंड के खिलाफ डीआरएस का भी इस्तेमाल करने को राजी हो गया है। इससे लगता है कि आईसीसी में अब उसकी अकड़ थोड़ी ढीली हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के शिकंजे में उसकी गर्दन कसती जा रही है। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर कहीं वो खुद ही हिट विकेट ना हो जाए।
ये थे दिल्ली से आदेश कुमार गुप्ता। इसी के साथ ही खेल के मैदान से अब्दुल्ला फारूकी को इजाजत दीजिए।